जगन्नाथ कथा बाय हिज होलनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्र देवी की, श्री राधा गिरिधर जीव की, श्री गौर निताय की, गौर प्रेमानंद। ओम ज्ञानत मीरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमावं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदिनतरणं श्रीचैतन्यवीश्वरम्। तो मैं काल वर्णना किया श्री क्षेत्र पुरी में जगन्नाथ का आविर्भाव का इतिहास के बारे में, कैसा जगन्नाथ पहले नील माधव रूप में प्रकाशित हुए थे, फिर अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति रूप में प्रकाशित हुए। तो जगन्नाथ का विशेष गुण के बारे में मैं बताया, जो कैसे जगन्नाथ स्वरूप में भगवान बहुत करुणामय होता है, कृपा। तो इसलिए जगन्नाथ को पतित पावन बोलते हैं। जितना पतित है भी जगन्नाथ उसको उद्धार करेंगे। तो जो पतित होते हैं, पापी होते हैं, जगन्नाथ वो लोग के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जो गर्व अहंकार करते हैं तो अहंकार को विनाश करते हैं। इसलिए जगन्नाथ का और एक नाम होता है गर्वगंजन। जो गर्व या अहंकार को विनाश करते हैं, तो पतित पावन होते हैं, उनका जितना सारी लीला होता है तो या तो पतित पावन लीला होता है, नहीं गर्वगंजन लीला होता है, भक्त जनरंजन लीला होता है। भक्त जन को मन को रंजन करते, आनंद प्रदान करते हैं, और अहंकार लोग गर्व को गंजन खंडन करते हैं, विनाश करते हैं। पतित पावन पतित को उद्धार करते हैं और क्या करता है ना, भावग्राही जनार्दन, वो भक्त का भाव को कैसे ग्रहण करते हैं। तो भगवान का जितना सारी लीला है ऐसा ही होता है। तो अभी तो वो जगन्नाथ मंदिर में हमारा इस्कॉन विदेशी भक्तों को अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो अभी की नहीं, पहले जमाना भी में जमाना भी वो नहीं देते थे। इसलिए भगवान का जगन्नाथ का जितना सारी लीला होता है वो जगन्नाथ मंदिर छोड़ के बाहर आता है। जगन्नाथ लीला का एक वैशिष्ट्य होता है, कैसा जगन्नाथ वो भक्तों को करुणा करने के लिए लोगों ने, पंडा लोगों ने, पुजारी लोगों ने भक्त लोगों को मंदिर घुसने नहीं देते हैं, लेकिन भगवान रत्न सिंहासन छोड़ के भक्त का भक्ति भाव को ग्रहण करने के लिए बाहर आता है। इस सब लीला में एक वैशिष्ट्य होता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कथा, भगवान जगन्नाथ के साथ पतित पावन होते हैं। तो आप लोग जो जगन्नाथ पुरी गए हुए, पतित पावन को दर्शन किए आप लोग? किधर पतित पावन है? मंदिर एंट्रेंस में डान तरफ होता है ना, पतित पावन होता है। तो जो लोग अंदर जा नहीं पाते हैं तो पतित पावन को दर्शन करके उद्धार पाते हैं। तो ये पतित पावन विग्रह कब से उधर प्रकटित हुए, इसके बारे में एक ऐतिहासिक लीला ऐसा वर्णन किया जाता है। तो राजा रामचंद्र देव थे, वो उत्कल का सम्राट थे राजा रामचंद्र देव। तो मुगल लोगों का शासन का समय था, तो दिल्ली बादशाह थे। तो दिल्ली में बैठते थे, सम्राट थे, लेकिन भारत में जितना सारे छोटा छोटा राज्य था तो उधर भी उनका प्रभाव था। तो उत्कल में, उड़ीसा में, उनका सूबेदार अपॉइंटमेंट किए थे। सूबेदार जो देखभाल करता था उसका नाम था ताकी खां। और मुसलमानों को तो ये काम था, हिंदुओं का मंदिर तोड़ देंगे, ठाकुर देवताओं को नष्ट कर देंगे, ऐसा करते थे। तो तब तो राजा रामचंद्र देव का शासन का समय था। तो राजा रामचंद्र देव ने सोचने लगे, वो तो मुसलमान तो हर समय हम लोग को मंदिर पर ऐसा आक्रमण करता है। तो एक बार युद्ध हुआ राजा रामचंद्र देव और ताकी। रामचंद्र देव का राजधानी था खोरधा, हाँ, और ताकी खां का ऑफिस था कटक शहर में। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में रामचंद्र देव हार गए। तो ताकी खां रामचंद्र देव को बंदी बना दिया। तो बंदी बना लिया तो रामचंद्र देव तो बहुत चिंतित थे, अभी तो मंदिर का ऊपर आक्रमण करेगा। तो मुसलमान लोगों को मंदिर का ऊपर आक्रमण करना नहीं करना वो बड़ा बात नहीं, उन लोगों को पैसा चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा, मैं ये रामचंद्र देव का साथ बंधुता करूँगा, तो जितना हिंदू लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा और पैसा मेरे को ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ताकी खां एक प्रस्ताव रखा राजा रामचंद्र देव के पास, तुम एक काम करो, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, बंदी करके नहीं रखूंगा, एक शर्त पर। क्या शर्त है? ना, मेरा एक बहनी है, उनका नाम रेजिया, तो तुमको शादी करो। शादी करके वो फैमिली रिलेशनशिप करने चाहता था। तो राजा रामचंद्र देव ने बताया, नहीं हो नहीं सकता, मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम नहीं बनूंगा। तो राजा रामचंद्र देव मना कर दिया। तो उसी दिन रात को जो राजा रामचंद्र देव बंदीशाला में थे, जेलखाना में, एक लड़की आया, वो रेजिया, वो ताकी खां का भगनी बहनी, तो जेलखाना में आई। तो आके राजा को बताए कि तुम कृपा करके मेरे को शादी करो। क्यों? राजा ने बताया, नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, मैं, तुम मुसलमान लड़की हो, तुमको क्यों मैं शादी करूँगा? तो लड़की बताए, नहीं, मेरा माँ हिंदू है, मेरा माँ जगन्नाथ का परम भक्त है। क्योंकि उस समय ऐसा था, सब मुसलमान राजा ने लोगों ने सो हिंदू लड़कियों को पकड़े जोर जबरदस्त शादी करते थे। तो ताकी खां, मेरा माँ को शादी किया, लेकिन मेरा माँ परम भक्त है, मैं भी जगन्नाथ का परम भक्त हूँ, तुम मेरे को शादी करो तो जगन्नाथ का मंदिर सुरक्षा करो, नहीं तो जगन्नाथ मंदिर ये दुष्ट है और ध्वंस कर देगा। तो रामचंद्र बोलते, नहीं, मैं कैसे तुमको शादी करूँगा, मैं हिंदू हूँ। तो बोला, तुम मेरे को नाम मात्र को शादी करो, बस तुम जगन्नाथ का मंदिर को रक्षा करना पड़ेगा तुमको। तो रामचंद्र देव का इच्छा नहीं था, तब भी जगन्नाथ का मंदिर को सुरक्षा करने के लिए वो रेजिया को शादी की। तो जब रामचंद्र देव ये मुस्लिम लड़की को शादी किए तो ये संवाद सारा उड़ीसा में फैल गया, तो लोगों ने खूब धिक्कार के, ईसा राजा है, हिंदू राजा होकर मुसलमान बन गया, मुसलमान लड़के को शादी किया। तो जो वो संवाद रामचंद्र देव का जो राज क्या राजनहर में पहुंचा, तो उनका रानी लड़का लोग सब उनको छोड़ के त्याग करके चले गए, तो मुस्लिम बन गया, सब छोड़ दिए। तो ऐसा भी हुआ, वो जब मुस्लिम लड़के को शादी किए, देखो अभी तो मुसलमान क्रिश्चियन को मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, उस समय भी ये जगन्नाथ मंदिर तो राजा का ही मंदिर था, प्राइवेट टेम्पल था, तब भी ये पंडित लोग रामचंद्र देव को भी मंदिर में घुसने नहीं दिए, तुम मुस्लिम लड़के शादी किया इसलिए तुमको मंदिर में घुस नहीं पाए, जगन्नाथ का दर्शन बंद कर दिए। और हर एकादशी को आज भी आप लोग जाएंगे देखेंगे मंदिर का ऊपर एक पांडे लोग जाके प्रदीप प्रज्वलन करते हैं, तो बारिश होता है जब भी हर एकादशी को वो प्रदीप लेके ऊपर जाएंगे जलाएंगे, और राजा का नाम पर एक प्रार्थना भगवान को करेंगे, ये राजा को आप सुरक्षा करके रखिए। तो जब रामचंद्र देव मुसलमान लड़कियों को शादी किए, तो वो प्रदीप जलाना बंद कर दिए, रामचंद्र को मंदिर घुसना बंद कर दिए। तो रथ यात्रा होता था, रथ यात्रा में जो राजा झाड़ू लगाते हैं छेरा पहरा करते, वो भी बंद कर दिए। तो उससे राजा ने रामचंद्र देव बहुत दुखी हो गए, लेकिन राजा रामचंद्र तो बाहर को तो ऐसा शादी किए मुस्लिम लड़की, अंदर में तो परम जगन्नाथ का परम भक्त है, लेकिन मुस्लिम लड़की को शादी किए इसीलिए सब लोगों ने उसको पतित करके माने, तुम पतित हो, हाँ तुम पतित हो गए, तुम अंदर जा नहीं पाएंगे। तो राजा रामचंद्र हर रोज रात को जब सब लोग सो जाते थे, तो घोड़ा में सवार होके खुर्धा से 30 किलोमीटर पूरी से होता है, तो पूरी जाते थे, पूरी जाके बड़ दांड पर रास्ता पर बैठ के रोते थे और जगन्नाथ को प्रार्थना करते थे, जे प्रभु मैं आपको सुरक्षा के लिए ये मुस्लिम लड़की को शादी किया, तो मैं तो पतित हो गया, सब लोग आपको दर्शन करते हैं, मैं दर्शन नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत व्याकुलित होके भक्ति सहकार भगवान को प्रार्थना करते थे, रोज जाते थे। तो एक दिन तो मंदिर में अंदर घुसने नहीं पाते थे, तो एक दिन रात को राजा ने देखे तो जगन्नाथ सिंह दरवाजा पर आके उसको दर्शन दिए, स्वयं दर्शन दिए, तो बहुत खुश हो गया, तो दर्शन करके वो वापस चला गया। तो नेक्स्ट डे सुबह जब पांडे लोग आए, तो मेन गेट जब खोले, तो जगन्नाथ मंदिर का जो सिंह दरवाजा होता है इसके 22 स्टेयर कैसे होता है, फिर अंदर में और मंदिर होता है, तो सिंहासन तक जाने पड़ता है। तो पुजारी ने देखे वो सिंह दरवाजे से शुरू करके सिंहासन तक सब फूल तुलसी का पत्ता भगवान का शरीर का अलंकार सब पड़ा हुआ है। तो पंडित लोग आश्चर्य हो गए, ये सब कैसा इधर आया। तो रात को जब मंदिर बंद होता है, तो पूरा मंदिर शोध होता है, शोध का मतलब पानी देकर अच्छा से सफाई होता है। तो सुबह सुबह ये सब फूल तुलसी ये सब किस आता है, सिंह दरवाजा से सिंहासन तक, तो किसी को कुछ मालूम नहीं होता था। एक दिन दो दिन ऐसा हुआ, तो लोगों बोले क्यों ऐसा होता है। तो फिर जगन्नाथ ने जो बड़े पंडित के सपने में आए और उनको बताया, देखो तो मेरा परम भक्त रामचंद्र देव, तुम उनको मंदिर में आने नहीं देते हो, इसलिए मैं उनको दर्शन देने के लिए हर रोज सिंह दरवाजे पर आता हूँ। तो राजा पंडित चिंतित हो गए, जब भगवान ऐसा सिंहद्वार जाते आते रहेंगे तो कब जी वापस भाग जाएंगे उधर से। तो जगन्नाथ बताए तुम एक काम करो, तो मेरा तो राजा तो दर्शन नहीं कर पाता है, इस सिंह दरवाजे के पास मेरा प्रतीक्षा भी तुम रखो उधर। इसीलिए उसी दिन से राजा रामचंद्र देव शासन काल पहले उपतितावाबन नहीं थे, तो रामचंद्र देव शासन समय का काल से वो पतितावाबन मूर्ति उधर बैठा गया। तो जो लोग अंदर जा नहीं पाता है पतितावाबन को दर्शन करके वो लोग उद्धार पाता है। तो देखिए भगवान कितना कृपालु है। तो भगवान क्यों कौन सा बड़ा जाति का होता है, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, देखते नहीं। तो जो भक्ति से उनको पुकारता है वो रत्न सिंहासन छोड़ के उनके पास आता है, लेकिन वो तो पतितापावन होता है, पतित को सहन कर पाएंगे, उद्धार करेंगे, कृपा करेंगे, लेकिन जो गर्व अहंकार करते हैं उसको सहन नहीं करेंगे। तैसा कि लीला हुआ तो हैदराबाद से एक बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी आया था पूरी, उनका नाम था जगत सेठ। तो पुराना जमाना का बात है, वो सुना जगन्नाथ का इतना महिमा है, सारा जगत संसार का प्रभु होते हैं, तो 1,00,000 रुपया डोनेशन लेके आया। आके पुजारी लोगों को बताया जब मैं 1,00,000 रुपया का सामान जगन्नाथ को खिलाऊंगा एक दिन में। अरे 1,00,000 रुपया कैसे हम लोग खर्च करेंगे? उस समय दूध का लीटर था 4 पैसा, घी किलो था 50 पैसा, तो 1,00,000 रुपया तो पंडे लोग देखे ही नहीं जीवन में। पंडे लोगों ने बताया तुम पैसा देके जाओ, हर रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भगवान के सेवा में लगाएंगे। ये तो अहंकार था, नहीं तुम्हारा जगतनाथ जगत का नाथ है, और 1,00,000 रुपया एक दिन में तुम लोग खर्च कर नहीं पाएंगे भगवान का सेवा में, तो कैसा बड़ा भगवान है तुम्हारा। तो पुजारी लोगों ने बहुत बड़ा चिंतित हो गए, तो जगन्नाथ बदनाम हो जाएगा। तो लोगों ने बताया ठीक है तुम तो 1,00,000 रुपया ले, 1,00,000 रुपया हम लोग कैसा खर्च करेंगे, तो हम दिमाग में नहीं आता है एक दिन में। ठीक है मैं हम लोग भगवान को पूछेंगे, जगन्नाथ को आज रात को पूछेंगे, जगन्नाथ क्या खाने चाहते हैं तुमसे। तो सेठ जी को खुश हो गया, देखो मेरा मेरे मेरे से क्या ग्रहण करेंगे जगन्नाथ बताएंगे आज रात को। तो पंडा जी हेड पुजारी तो मंदिर में सोए रहे, जगन्नाथ को प्रार्थना करके आप बताइए तो कैसे हम लोग 1,00,000 रुपया क्या क्या द्रव्य आपको हम लोग ऑफरिंग करेंगे तो 1,00,000 रुपया हम लोग खर्च कर पाएंगे। तो जगन्नाथ रात को आएंगे, सपने में आए तो हेड पुजर को बताए ये सुना तुम वो जगत सेठ को बताओ काल मेरे को एक पान देने के लिए, खिली पान होते हैं, पान मालूम है ना, तो पान खाते हैं और खिली पान देने के लिए। तो पुजर ने बताया अरे खिली पान वही 1,00,000 रुपया ले आया, खिली पान का क्या कुछ कीमत ही नहीं, घी किलो 50 पैसा तो खिली पान क्या होगा। तो 1,00,000 रुपया ले आया, 1,00,000 रुपया कैसे खर्च करेंगे हम लोग वो बताइए। जगन्नाथ ने बताया ना नहीं उसको बताओ मैं तो जगत का नाथ हूँ ना, मेरे को पान खिलाएंगे, लेकिन पान में लोग चून देते हैं ना, क्या देते हैं, चून चून बोलते हैं, चूना चुनार चुनार देते हैं, वो चुनार में मैं नहीं खाता हूँ, चुनार का चुनार नहीं देना मेरे लिए, क्या देना गौज मोती होता है, सो मोती होता है ना मोती, तो हाथी का सर में मोती होता है, वो मोती का पाउडर बना के मेरा पान में देने पड़ेगा, तो वो पान में खाऊंगा। बुद्धि दे दी जगन्नाथ। तो नेक्स्ट सुबह जगत सेठ सब ड्रेस अच्छा से पगड़ी बंधा के अच्छा से ड्रेस पहन के आया, जगन्नाथ क्या खाएंगे 1,00,000 रुपया कैसा खर्च होगा। तो हेड पुजारी बताया जगत सेठ को, जगत सेठ बोला पूछा जगन्नाथ क्या बताया क्या खाएंगे 1,00,000 रुपया कैसा खर्च होगा। तो पुजारी ने बताया जगन्नाथ ने बोले तुम उनको खिली पान खिलाओ, पान खिलाओ। तो जगत सेठ बोला पान, अरे क्या पान, हमें 1,00,000 रुपया ले आया और तुम एक पान खिलाकर नहीं बोलते मेरे को। तो पुजारी ने बताया नहीं वो पान में चुनर नहीं देना है, वो पान में गजमोती का पाउडर देने पड़ेगा। अरे गजमोती हजारों हाथी मारेगा तो एक मोती मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सेठ जी से इतना तो करोड़ों करोड़ रुपया लगा, मैं तो 1,00,000 रुपया लेकर आया। तो उसका दिमाग तो खुला, बोला मैं अहंकार करके आया था जो भगवान को 1,00,000 रुपया खिलाऊंगा, हाँ लेकिन मेरा एक एक पान खिलाने का क्षमता मेरा पास नहीं, तो साथ तो वहाँ उसका अहंकार चूर्ण हो गया, तो सर से पगड़ी निकल दिया और सो जो सेठ जी का कपड़ा पहन से खोला, नम्रता सहकार वो लाखों रुपये का झोली लेके जगन्नाथ का चरण का कमल में रखा। हाँ, मैं इतना अहंकार करके आई, एक गर्भगंजन जगन्नाथ अहंकार का चूर्ण करते हैं, अहंकार वो सहन कर नहीं पाएंगे, पतित को सहन करेंगे, पतित को उद्धार करेंगे। ये बहुत एक गुरुत्वपूर्ण विषय होता है। तो कैसा भगवान भक्त का अंदर में अहंकार को चाहते नहीं। तो एक आया था कश्मीर से, बहुत बड़ा पंडित था, कश्मीर का पंडित, ब्राह्मण पंडित था, बहुत शास्त्र अध्ययन किया, उदयन आचार्य। तो उदयन आचार्य ने शास्त्र में पढ़ा जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ को दर्शन करेंगे वो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, लेकिन शास्त्रों का कथा का ऊपर भरोसा नहीं था। वो तो ऐसा होगा दर्शन करने से मुक्ति मिल जाएगा, मैं परीक्षा करके देखूंगा, हाँ कैसा जगन्नाथ का दर्शन करने से साथ साथ मुक्ति मिल जाता है। तो ये मन में अहंकार लेकर आया, तो पुरी में आया। तो जो दिन पुरी वो आया, नेक्स्ट डे वो सुबह जाकर जगन्नाथ को दर्शन करेगा। तो सुबह तो पुजारी लोग आके जो आके जब जगन्नाथ का मंदिर खोलने के लिए कोशिश किए, वो ताला खोलते नहीं, खोले सारा दिन बीत गया, वो मंदिर वो खोलते नहीं। तो सब लोग बड़ा चिंतित हो कि क्यों जगन्नाथ मंदिर खोलते नहीं। तो रात को जगन्नाथ ने इस सपने में बताए कि इस शहर में एक बड़ा महान अहंकारी लोग आया, उसका मन में ये भरोसा नहीं जो मेरा दर्शन करेगा उसको मुक्ति मिलेगा, वो परीक्षा करने के लिए आएगा। ये जब तक वो उदयन आचार्य इस पुरी में रहेगा तब तक मेरा मंदिर नहीं खोलेगा, उसको इधर से भागाओ फिर मंदिर खोलेगा। तो नेक्स्ट डे सुबह सब पूजा लोग कौन उदयन आचार्य है, पूछ लगे उदयन आचार्य कौन है। तो उदयन आचार्य सुबह जाग के स्नान करके गायत्री करके पूजा पाठ करके पहुंचा। उदयन आचार्य, मैं उदयन आचार्य हूँ और तुम उदयन आचार्य हो, जगन्नाथ का ऑर्डर है तुम अभी पूरी से भागो इधर से। क्यों? तुम्हारा मन में विश्वास नहीं जगन्नाथ का दर्शन करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगा, तुम परीक्षा करने के लिए इसलिए जगन्नाथ तुम्हें दर्शन नहीं देगा। तो इसको सुन के उनका मन का मन में सब अहंकार चूर्ण हो गया। तो जगन्नाथ के पास जाकर माफी मांगा, हाँ, तो फिर जगन्नाथ का दरवाजा खोला, फिर जाके दर्शन किया। ये तो बाहर का आदमी होता है, भगवान जगन्नाथ उनका भक्त का मन में कभी अहंकार आने से भी कैसा चूर्ण करते हैं उसका भी एक लीला किए। आप लोगों को मालूम है भगवान विष्णु का अस्त्र सुदर्शन होता है, शिव का एक तरीका अस्त्र होता है, रामचंद्र का धनुष बाण होता है, दुर्गा देवी का एक रकम अस्त्र होता है, लेकिन विष्णु का अस्त्र क्या होता है, सुदर्शन चक्र होता है। तो सुदर्शन कृष्ण या विष्णु जगन्नाथ एक ही होते हैं। तो भगवान का दाहिने हाथ पर सुदर्शन चक्र होता है, जिधर भी जाओ भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को दाहिने हाथ में पकड़ के रखता है। लेकिन पुरी में जब जाते हैं सुदर्शन देखने के लिए कैसा है, चक्र है, चक्र का माफिक है, कैसा है, एक खंबा है ना, देखो उधर रखा है, वो चक्र नहीं, क्यों सब चक्र बोलते हैं उसका देखने के लिए खंबा क्यों। तो इसके बारे में पुरी का लोगों ने ये बात बताते हैं। तो आप लोग जाएंगे, जब जाएंगे दर्शन करेंगे उत्तर दरवाजा पर जो सीढ़ी है ना, अब जाएंगे कोयली वैकुंठ है और थोड़ा नीचे जाएंगे बाँ तरफ, उधर तपस्वी हनुमान होते हैं, तपस्वी हनुमान वो चार चक्र हाथ में बैठ के उधर बैठे हुए दर्शन करेंगे। तो लीला ऐसे वर्णन किया जाता है, एक बार सुदर्शन का मन में बहुत अहंकार आया, गर्व आ गया, मैं कितना महान भक्त हूँ, मैं इतना पराक्रमी हूँ, भगवान को भी रक्षा करता हूँ, भगवान मेरे को हाथ में पकड़ते हैं। तो मन में थोड़ा ऐसा चिंता आ गया। तो भगवान का भक्त मन में ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन भगवान हम लोग को शिक्षा देने के लिए जैसा अर्जुन शुद्ध भक्त होने से भी, भगवान का सामने में रहने से भी वो माया मोहित जीव के माफिक प्रश्न पूछता है। तो भगवान हम लोग दिखाने के लिए, सिखाने के लिए ऐसा लीला रचना की। तो सुदर्शन का मन में ऐसा अहंकार आया, मैं कितना महान हूँ, कितना पराक्रमी हूँ, मैं सबसे भगवान का बड़ा भक्त हूँ। हाँ, तो जगन्नाथ तो अंतर्जामी होता है, तो जगन्नाथ को मालूम हो गया सुदर्शन का मन में अहंकार है, तो अहंकार को चूर्ण विनाश करना चाहिए। तो एक दिन सुदर्शन को बुलाए, सुदर्शन तुम्हें काम करो, ये दक्षिण सागर में जाओ, उधर एक द्वीप है, आइलैंड है, उधर एक खमरा बहुत महापराक्रमी भक्त वो तपस्या कर रहा है, तुम उसको जाके बुला के ले आओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो सुदर्शन सोचते हैं महापराक्रमी, मेरे से बहुत पराक्रमी है, मेरे से बहुत बड़ा भक्त है, ये कौन है? तो जगन्नाथ ने बताया वो हनुमान है, तुम हनुमान के बुला के ले आओ। तो सुदर्शन साथ साथ गए, तो हनुमान उधर तपस्या करते थे, तपस्या हनुमान। तो हनुमान को बताया प्रभु जगन्नाथ आपको मिलने चाहते हैं, तो आप आइए। तो हनुमान जब प्रस्तुत होता था आने के लिए, तो सुदर्शन तो मन का स्पीड पे जाते हैं, उनका गति मन का स्पीड जितना उतना होता है। तो जल्दी आ गए जगन्नाथपुरी, पहले आ गए। तो फिर कुछ देर के बाद जब हनुमान आए, तो हनुमान तो मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो पूर्व द्वार का पूर्व सिंह द्वार होता है, एक सुदर्शन चक्र उधर घूमते हुए था, सुदर्शन चक्र वो अंदर घुसने नहीं देता है। फिर उत्तर दरवाजे पर गए, तो उधर और एक चक्र घूमता है, अंदर जाने नहीं देता है। पश्चिम दरवाजे पर, दक्षिण, चार दरवाजे हैं जिधर के एक एक चक्र घूमते, अंदर नहीं जाने देता है। तो हनुमान कैसे जाएंगे? तो भगवान को प्रार्थना के स्मरण, प्रभु अभी मैं क्या करूँ, आपका निर्देश है आपका दर्शन के लिए जाने के लिए, अभी तो सुदर्शन नंबर को छाड़ते नहीं चक्र। तो जगन्नाथ का कृपा से हनुमान का और चार हाथ हो गया, और हनुमान का मंदिर में इतना ताकत हुआ, वो तो चार हाथों में एक एक चक्र पकड़ के गए, एक खिलौना जैसा पकड़ के अंदर घुसने लगे। तो अंदर में रत्न सिंहासन का ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठे थे, और उनका सामने में सुदर्शन चक्र का मूर्त रूप धारण करके हाथ जोड़ के सिंहासन के पास बैठे थे नीचे। तो सुदर्शन सोचते हैं मैं तो हनुमान को बोल के आया प्रभु के साथ मिलने के लिए, लेकिन हनुमान कैसे आएगा? मैं तो चार दरवाजों पर चक्र रखे थे, तो आ नहीं पाएगा, मैं देखो कितना पराक्रमी हो, वो सुदर्शन सोचता है। तो कुछ देर के बाद सुदर्शन ने देखा तो हनुमान मंदिर के अंदर घुसते हैं, चारों हाथ में चार चक्र पकड़ के, खिलौना जैसा। तो सुदर्शन देखे बहुत लज्जित हो गया। तो सुदर्शन सोचता मैं तो बहुत बड़ा पराक्रमी है। तो सुदर्शन देखा हनुमान भी चार चक्र पकड़ के आता है इस हाथ में। तो जगन्नाथ सुदर्शन का और देखे और हंसने लगे, सुदर्शन तुम सोचते थे तुम सबसे पराक्रमी हो, देखो हनुमान तुम जैसा चारों को पकड़ के अंदर घुसता है। तो सुदर्शन बहुत लज्जित हो गए। तो भगवान जगन्नाथ ने उनको शिक्षा देने के लिए बोले तुम बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, तो मेरा पास में तुम चक्र होकर नहीं रहेंगे, इधर डंडा बन जाएंगे, खम्भ बन जाएंगे, मेरा दाहिना तरफ नहीं बैठेंगे तुम, मेरा बाँ तरफ बैठेंगे। हाँ, इसलिए उसी दिन से सुदर्शन चक्र रूप नहीं वो दंडा रूप धारण किया। तो सुदर्शन बहुत बड़ा दुखी हो गए, प्रभु मैं तुम्हारा नित्य सेवक हूँ, मेरा सेवा से वंचित हो गया, अभी क्या करूँ? तो जगन्नाथ ने बताया मैं तो बोल दिया उसको, तो वापस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको वरदान दूंगा। वरदान क्या? तुम मेरा पास में दंडा खम्भ रूप में रहेंगे बाँ तरफ, लेकिन मेरा मंदिर ऊपर तुम चक्र रूप में रहेंगे, और तुमको नील चक्र बोला जाएगा। नील चक्र, नील समुद्र का तीर में, नील पर्वत का ऊपर, नील कंदर गुफा को कंदर बोलते, नील कंदर का अंदर में मेरा स्वरूप है नील माधव। तो तुम मेरा मंदिर पर नील चक्र ऊपर रहेंगे, नील चक्र पुराण में ऐसा लिखा जाता है, शास्त्र में किताब में, नील चक्र तो नील वर्ण होता है और सूरज जब उदय तक, उदय से सूर्य करके अस्त तक भिन्न भिन्न कलर भी चेंज होता है। तो जगन्नाथ ने बताया तुम चक्र स्वरूप में मेरा मंदिर ऊपर रहेंगे और तुमको एक वरदान देता हूँ, जो कोई आदमी मेरा मंदिर में प्रवेश करके मेरा दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता करेगा, तो मंदिर में जो लोग आते नहीं तुमको दर्शन करने से उसे ही फल प्राप्त होगा। जगन्नाथ कृपा करके सुदर्शन को बैठाए उधर। मैं सोचता हूँ जगन्नाथ को ये मालूम है तो प्रभुपाद आके इस्कन बनाएंगे, विदेश से देश विदेश भक्त बनेंगे, ये पंडे लोग तो अंदर जाने नहीं देंगे, तो आगे से ठीक करके रखे हुए हैं तुम उधर बैठो। तो विदेशी लोग अंदर में नहीं आ सकते हैं, तो मेरा तुमको दर्शन करके मेरा दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र को देख के चैतन्य महाप्रभु जब पहला बार सन्यास लेके पूरी गए तो 5 क्रोस पहले से सुदर्शन चक्र को देखे थे। चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन आता है, तो सुदर्शन चक्र को देख के उधर बाल गोपाल रूप दर्शन हुआ उनका, बाल गोपाल रूप दर्शन करके मूर्छा होकर गिर गए। हाँ, फिर उठ के जब दर्शन के फिर गिरते, ऐसा प्रणाम करते हुए पूरी तक आए। तो सुदर्शन चक्र को उधर ही जगन्नाथ रूप में दर्शन करते हैं लोगों, ऐसा की लीला हुआ। तो एक दासिया बाउरी करके एक भक्त था, दासिया बाउरी आप लोग सुने हुए ना, वो नारियल भेजा, दासिया बाउरी एक बहुत फेमस, वो तो अंदर नहीं जाने, वो तो क्या शेड्यूल कास्ट का था, हरिजन था, अंदर नहीं जा पाता था। एक ब्राह्मण को देखे एक नारियल भगवान को ऑफरिंग करने के लिए भेजा, तो ब्राह्मण को बोला तो तुम गरुड़ स्तंभ का पीछे ठहर के जगन्नाथ का नारियल ऑफरिंग करो। तो जगन्नाथ स्वयं नारियल ग्रहण करे, हाथों से लेंगे तो देना है, नहीं लेंगे तो वापस ले आओ। तो ब्राह्मण सोचता है जगन्नाथ हाथ में, जगन्नाथ हाथ ही नहीं, हाथ में क्या लेंगे। तो फिर नारियल लेके गरुड़ स्तंभ का पीछे ठहर के तो बोला प्रभु तुम्हारा भक्त दासिया ने भेजा नारियल, तुम उसको ग्रहण कीजिए। तो देखा सिंहासन से बहुत लंबी एक हाथ आया और नारियल को पकड़ के बस सिंहासन तक उड़े, लोगों ने हाथ नहीं देख पाए, तो नारियल उड़ते हुए जाते देखे। तो वो जो दासिया बाउरी तो इतना भक्ति, उनका भक्ति भक्ति इतना भक्ति इतना तीव्र था। तो दासिया बाउरी ने एक बार, तो जगन्नाथ मंदिर तो जा नहीं पाता था, तो वो आया एक बार रथ यात्रा भगवान को दर्शन करने के लिए आया। तो जगन्नाथ रथ के ऊपर जगन्नाथ को दर्शन किया, लेकिन वो जगन्नाथ का पूरा रूप को दर्शन से सबसे उनको आँखों उनको बहुत अच्छा लगा, तो सुंदर आँख देख के, तो आँख को ही दर्शन सारा दिन रहा और नृत्य कीर्तन करता था, भगवान का आँखों का ही दर्शन करता था, आँखों का ही दर्शन करता था। तो आँखों देखा सुंदर आँख है, हाँ, तो आँख का जगन्नाथ का आँख कैसा, काल में बताया था ना जगन्नाथ का आँखों का वैशिष्ट्य क्या है, याद है? हाँ, चारों ओर लाल है, लाल सर्कल है, लाल सर्कल का अंदर क्या है, काले सर्कल है, काले सर्कल बीच में क्या है, एक सफेद, ये जगन्नाथ आँखों होता है ना, वो देखा सारा दिन देखता था भगवान का आँखों। तो जब शाम को वापस आया तो उनका पत्नी उनको खाने के लिए खाना ले आया, तो हरिजन लोग होता है, शेड्यूल कास्ट का लोग होता है, वो मिट्टी का थाली में खाता था। तो एक लाल कलर का गोल मिट्टी का थाली था, तो मिट्टी का थाली का बीच में सफ़ेद कलर का चावल रखा, चावल का ऊपर थोड़ा स्पिनेज, स्पिनेज क्या, शाक, हाँ शाक, थोड़ा शाक रख दिया। तो गरीब लोग है क्या खाएंगे, तो वो पत्नी, उनका पत्नी वो खाना लेकर आया, तो वो जो खाना देखा वो देख के उसको याद आ गया क्या, जगन्नाथ की आँखों, आँख है ना, लाल सर्कल है, फिर काला है और सफ़ेद है। तो देखा, देख के बहुत कहो कितना सुंदर है प्रभु तुम्हारा आँखों कितना सुंदर, बोल के वो नाचने कूदने दौड़ने लगा ऐसा भगवान नाम कीर्तन करके। हाँ, तो ऐसा ही भगवान का भक्त स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। भगवान का जो भक्त होते हैं स्थावर जंगम नहीं देखते हैं, वो तो पहाड़ पर्वत मकान नहीं देखते हैं, जब जब इच्छनम जिधर भी उनका दृष्टिपात होता है सब भगवान को ही देखते हैं। तो ये खाना को देख के सोचता है तो मैं प्रभु का आँख है, आँखों को कैसे खाऊंगा, फिर प्रभु का आँख दिया कैसे खाते, खुश होकर खूब नृत्य कीर्तन करते हैं। और उनका पत्नी सोचते है क्या हो गया मेरा स्वामी को, ये तो पूरी गया था, कोई मंत्र तंत्र कर दिया इसको ना, भूत प्रेत लग गया, क्यों ऐसा करते हैं वो तो समझ में नहीं आया। तो फिर जाके जो गांव का जो मुखिया लोग होते हैं बोला के ले आया, आओ देखो मेरा स्वामी को कोई भूत पकड़ लिया ना कोई मंत्र तंत्र कर लिया, वो खाते नहीं। तो गांव का मुखिया लोग आए, दो चार मुखिया लोग आए, तो उसको पूछे अरे दासिया बौरी तुम खाते नहीं क्यों, तो दासियारी बौरी बोला केक से मैं खाऊं, अरे ये मेरा प्रभु का आंखों तो कितना सुंदर आंख है, तो आंखों का वर्णना करने शुरू कर दिया। तब ये लोग को मालूम हुआ ये भूत प्रेत ही लगा उसको, ये भक्ति से इसको देख के भगवान आंख सोचते हैं वो खाते नहीं। तो गांव का मुखिया लोग उनका पत्नी को बताया तुम एक एक थाला ले जाओ, वो सेपरेट करके अलग करके चावल और साग दो। तो पत्नी उसको लेके चावल और साग अलग करके ले आया, तब वो खाया उसको। तो ऐसा भक्त था, 2 किलोमीटर अभी भी उसका वो गांव है, अभी दासियावर का गांव अभी भी है उधर, में जाके 2 साल पहले जाके देख के आया, उधर मंदिर भी है, वो गांव भी है। तो एक दिन रात को वो सोया था, जगन्नाथ उनका स्वप्न में आए और जगन्नाथ बताए दासिया तुम मेरा इतना बड़ा भक्त हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा पर, मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, तुमको क्या चाहिए बता। तो बोला नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ना ना तुमको कुछ मैं देना चाहता हूँ। तो गरीब आदमी है क्या भगवान को मांगेगा, बोला आप कृपा करके मेरा रोज मेरे को खाना मिलेगा एक कृपा कर दीजिए। तो जगन्नाथ ने बताया अरे तुमको तो खाना मिलेगा प्रॉब्लम नहीं, और क्या चाहिए। तब दासिया बरु ने बताया जब मैं जब पूरी जाता हूँ तो आपको दर्शन देने के लिए लेने के लिए जाता हूँ, तो अंदर मेरे को घुसने नहीं देते, मैं दर्शन नहीं कर पाता हूँ, तो आपको मैं कैसा दर्शन करूँगा वो बता दीजिए। तो जगन्नाथ ने बताया ठीक है तुम जब पूरी जाओगे तो मंदिर में नहीं घुसने तो ठीक है, तुम मेरा चक्र को दर्शन करो, उधर मैं तुमको दर्शन दूंगा, चक्र पर मैं बैठ कर तुमको दर्शन दूंगा। तो कुछ दिन के बाद दासिया बाबू ने सोचा तो प्रभु तो मेरे को बताए दर्शन देंगे, मैं जाके प्रभु तो दर्शन करके आऊँगा, तो प्रभु के पास जाऊँगा खाली हाथ में कैसे जाऊँगा, कुछ तो भेंट लेके जाने पड़ेगा। तो 40 मैंगो आम अच्छा वाला पक्के हुआ स्वीट मैंगो एक बास्केट में लेके और पूरी गया। तो सिंह दरवाजे पर पहुंच गया तो पंडे लोग खड़े हो उधर, पंडे लोग को तो मालूम है वो अंदर घुस नहीं पाएगा, तो पंडे लोग सब आ गए तुम मेरे को दो मैं लेके ऑफरिंग कर दूंगा भोग चढ़ाऊंगा, सब पंडित झगड़ा लगाने लग दे शुरू कर दिया। तो ये बोला नहीं नहीं मैं तुमको नहीं दूंगा, है तुम नहीं देंगे, ये भगवान के लिए ले आए इसको भोग नहीं चढ़ाएंगे। तो दासिया बर बोला मैं भोग चढ़ाऊंगा, अरे तुम नीचू जाति का हो तुम कैसे भोग चढ़ाएंगे, तो देखो मैं क्या करता हूँ। तो बास्केट को जमीन पर रखा और सुदर्शन को दर्शन किया, जब सुदर्शन को दर्शन किया तब साक्षात जगन्नाथ उधर बैठा है। तो बहुत खुश होकर 2 आम उठाया बास्केट से, ओ प्रभु मैं आम ले आपके लिए आम लीजिए, तो इसे उठाया तो 2 आम हाथ से उधर अंतर्धान हो गया, जगन्नाथ ले लिए, फिर 2 उठाया फिर दिया तो भी चला गया। तो हाँ बहुत लोग आ गए ये देखने के लिए, एक ऐसा चमत्कार है वो आम देते उधर चला जाता है भगवान ले लेते हैं। तो पंडा लोग बहुत चिंतित हो गए, ऐसा भगवान खाएंगे तो हम लोग कोई सम्मान नहीं करेंगे। तो पंडा लोग ने बताया अरे ये क्या करता है, तो जादू दिखाता है मैजिक दिखाता है, ऐसा थोड़ी भगवान खाता है, वो मैजिक चैन है ऐसे आम उठाता है आसमान में चला जाता है मैजिक दिखाता है। तो दासिया बर ने बताया नहीं नहीं मेरा मैजिक मालूम नहीं, मेरे को मैजिक मालूम नहीं, मैं देखता हूँ जगन्नाथ उधर है, जगन्नाथ ही सब ले लेते हैं, तुम विश्वास करते नहीं, अंदर जाके देखो जगन्नाथ सब आम खाता है। एक पुजारी दौड़ने लगा अंदर मंदिर में। तो मंदिर दरवाजा खोला तो जगन्नाथ सब आम खा के, आम का छिलका और क्या कुटली सब पड़ा हुआ है मंदिर में, देखा होता है। ये भावग्राही जनार्दन, ये भक्त को आप जो भाव में देते हैं ना, भगवान मंत्र से ग्रहण नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग जाता है ऐसा बढ़ते हैं, ये नाक टिपते हैं, वो नाक टिपते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, खाते हैं नहीं करते हैं, क्या मालूम है। ये जो भक्त देते हैं उनका हाथ से डायरेक्ट भगवान ग्रहण करते हैं। ये भावग्राही जनार्दन होते हैं, ये भक्त बस भगवान भक्त का अधीन होते हैं। तो इससे हम लोग ये मालूम होता है नील चक्र और पतित पावन। आप लोग कभी मंदिर में जा नहीं पाता है, समय नहीं, तो सिंह दरवाजे के ऊपर ठहर के नील चक्र और पतित पावन दर्शन करेंगे तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ऐसा भावग्राही जनार्दन होता है, भाव को ग्रहण करते हैं। मैं कल बताया था आपको बोलने के लिए अलारनाथ के बारे में। अलारनाथ हाँ, एक नारायण का विग्रह है उधर। तो एक बार दक्षिण भारत से एक अलवर आए, अलवर मालूम है ना, अलवर दक्षिण भारत जो बड़ा भक्त होता है उसको अलवर बोलते हैं। तो एक अलवर आए जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। तो जब जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए आए, उस समय जगन्नाथ का मंदिर बंद है, 15 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है। उनका बुखार पास टाइम होता है, लीला होता है, उसको अनवसर बोलते हैं, मंदिर बंद है तब। तो बुखार होता है तो उस समय दैत्यापति लोग क्या देते हैं, उनको दवाई भी देते हैं। मैं काल बताया ना जो भगवान जगन्नाथ मंदिर ही एक मंदिर है, तो ब्राह्मण लोग जाकर पूजा करते हैं और सवर लोग भी पूजा करते हैं। भगवान का इतना प्रिय होता है। अब ब्राह्मण को पति महापत्र बोलते हैं और सवर लोगों को दैतापति बोलते हैं। दैता, दैता का अर्थ मालूम है, दैता मतलब क्या है, राधे जय जय माधव दैते, क्या है दैते, दैता का मतलब क्या है, राधे जय जय माधव दैते, क्या है दैता मतलब प्रिय। कौन ज्यादा प्रिय है, देखो ब्राह्मण है और इस सवर नीचू जाति का भक्त है। ये ब्राह्मण लोगों ने साल भर भगवान का सेवा करेंगे, अब दैता सवर लोग होता है एक महीना सेवा करेंगे। और कब सेवा करेंगे, जब भगवान को बुखार होता है। हाँ, आप जब फिट है, सुस्त है, आपका ऑफिस का लोग देखभाल करते हैं, आपका बॉस देखभाल करते हैं, जब आपका बुखार आता है कौन देखभाल करते हैं, हाँ, अरे परिवार का लोग देखभाल करते हैं ना। तो साल भर ब्राह्मण देखभाल करेंगे, जब बुखार आएगा ब्राह्मण का अधिकार नहीं, इस सबर लोग देखभाल करेंगे। तो कौन प्रिय है, हाँ, भगवान का कौन प्रिय है, इस सबर लोग, ये जगन्नाथ का महानता श्रेष्ठता। ये पतित लोगों को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। तो उस समय क्या करते हैं वो लोग, तो दैतापति लोग का पूजा का सिस्टम देखो, भगवान को प्यार से, भगवान को बुखार हुआ मेडिसिन बनाएंगे, मेडिसिन खिलाएंगे, सूखा चीज पत्थर भी खिलाएंगे, और एक सेसमी ऑयल होता है, तिल ना क्या हिंदी में बोलते मालूम है, तिल का तेल होता है, और तिल का तेल को मिट्टी में साल भर मिट्टी का अंदर में रखेंगे। हाँ, एक मिट्टी का पात्र लेके अंदर रखेंगे। हाँ, एक साल भर रहेगा, उसी तेल को लेके वो भगवान जगन्नाथ बलदेव को मैसेज करेंगे, बॉडी ऑयल मैसेज होगा। हाँ, ऑयल मैसेज होगा और जगन्नाथ का शरीर भी बहुत गर्म होगा। हाँ, फीवर होगा। मैं दुबई में था, राधा रत्न महाराज ने बताते थे, तो जो राम कुमार करके एक दैत्यपति होता है, तो वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर इधर, वो भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो गया था उसी समय में, वो जाकर अंदर में तक दिखाया, डॉक्टर को ले गया, तो डॉक्टर ने कहा सही सही बहुत गर्म था उनका शरीर। तो भगवान को बुखार नहीं होता है, लेकिन भक्त का भाव से भगवान को बुखार आता है। ये भक्त का भाव में पूजा करेंगे, और वो लोग क्या पूजा करते हैं, मेरा एक कि मेरा क्या निस निस को क्या बोलते हैं, बहनी को लड़के को क्या बोलते हैं, भांजा भांजी भांजी हाँ, अरे भांजा तो लड़का भांजी हाँ। तो दैत्यपति का घर में शादी की हाँ, उम्र को बोलते थे। तो दैत्यपति लोग क्या करते हैं, तो वो लोग जाते हैं भगवान को खाना खिलाते हैं। कैसे खाना खिलाता है वो लोग, तो पैता नहीं मंत्र भी मालूम नहीं, भगवान के पास सब रख देते हैं तुम खाओ, और भगवान को प्लेट बनाता है आपका प्लेट भी बनाता है वही गर्भ मंदिर में उनका साथ भगवान, और साथ में लोग भी खाते हैं भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद खाएगा, ऐसा नहीं भगवान एक साथ में खाते हैं, खाते हैं तो खाते हैं और खाने के बाद झूठा उधर छोड़ के आते हैं, वो परिष्कार भी करते नहीं 15 दिन तक, वो झूठा उधर छोड़ के आते हैं 15 दिन के बाद जो प्रसाद आता है ना सब फ्रेश ऐसा रखते हैं घर में, लेते लोग खाते हैं। कैसे चमत्कार देखो, जगन्नाथ का लीला भगवान का लीला देखो। तो भक्त को लेके भक्त कितना अंतरंग होता है, और कौन सा भक्त है जो सबर जाति का भक्त है, भगवान वेदों शास्त्र में ब्राह्मण को कितना बड़ा पोजीशन दिए हैं, कितना महिमा हाँ किए, तो साथ साथ भक्त का भी कितना महिमा, ब्राह्मण से भक्त को बड़ा पोजीशन दे दिए। तो ये अलवर वो आए थे अनवसर का समय पर, 15 दिन के लिए अनवसर होता है, हर साल 15 दिन के लिए होता है, लेकिन इस साल 45 डेज 45 दिन होगा, क्योंकि इस साल तो नवकलेवर होगा ना, नवकलेवर होता है 9 साल 12 साल, इस बार 19 साल में हुआ हाँ, इसे 19 साल बहुत दिन हो गया। तो जो जब दो आषाढ़ पड़ेगा, जब जगन्नाथ विग्रह प्रकटित हो उस समय जगन्नाथ ने बताया ऐसा रथ यात्रा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो दो आषाढ़ महीना पड़ेगा तो उस साल वो नवकलेवर होगा। तो जगन्नाथ विग्रह का पेट मंदिर में वो बोलते लिविंग शालिग्राम शिला है हाँ, किसी को मालूम नहीं क्या है अंदर में, तो आंखों बंद कर देंगे हाथ में कपड़ा लगा देंगे, तो मध्य रात्र को उसको लेके पुराना जो विग्रह से नया विग्रह में रखेंगे। तो इस साल 45 डेज वो एक अधिक मास होगा और 15 दिन 45 डेज जगन मंदिर बंद रहेगा। तो उस समय तो बंद था, तो अलवर आए मंदिर बंद, तो मैं प्रभु को दर्शन करने चाहता हूँ। तो पंडित लोगों ने बताया नहीं नहीं अभी भगवान का ज्वर है, ज्वर जो बुखार है बुखार है। तो अलवर है भगवान को बुखार क्या होता है, अरे भगवान है उनको थोड़ी बुखार होता है। तो पंडित ने तुम्हारा भगवान का बुखार नहीं होता है, हमारा भगवान का बुखार होता है। तो ये बोला नहीं मेरे को दर्शन दो, मैं बहुत दूर से आया। पंडित लोगों ने तुमको 15 दिन अपेक्षा करना पड़ेगा तब तुम दर्शन पाओगे। तो बोले नहीं मेरे को अभी दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जब आत्महत्या करूँगा। तो पंडित लोगों तुम जाओ आत्महत्या करो लेकिन हम लोग दर्शन नहीं कराएंगे। तो ये अलवर बहुत गुस्सा करके बहुत दुखी हो गया। तो गया समुद्र में जाके समुद्र में डूब के आत्महत्या करेगा। तो उस समय तो आज पूरी जैसा है उसे नहीं था, सो जंगल था, इतना मकान नहीं था जंगल था। तो मंदिर से समुद्र 2-3 किलोमीटर होता है, दक्षिण दिख पर दिशा पर जाने से समुद्र पड़ेगा। तो अलवर बहुत दुखी होके रोते हुए दुखी होके आत्महत्या करने के लिए जाता था। तो जगन्नाथ को मालूम हुआ, जगन्नाथ अंतर्जामी है बहुत चिंतित हो गए, आज मेरा दर्शन का बगैर मेरा भक्त आत्महत्या करेगा तो बुरे कलंक हो जाएगा हाँ, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो ऐसा होने से तो जगन्नाथ हनुमान को बुलाए, तो हनुमान को बताए तुम जाओ ये भक्त वो उसका विश्वास नहीं होता है जो मेरा बुखार है इसलिए आत्महत्या करने के लिए जाता है, मानते नहीं, तुम जाके उसको समझाओ वापस ले आओ जैसे आत्महत्या नहीं करेगा। तो हनुमान गए, तो ये लोग ये अलवर तो जाता था तो अलवर कैसा लगा उनका पीछे कोई आता है। तो पीछे घूम के देखा बहुत बड़ा हनुमान 30 फीट हाई बहुत बड़ा हनुमान, वो हनुमान अभी ठहरा है उधर दक्षिण दरवाजे पर जाएंगे आप वो हनुमान को देख पाएंगे, बहुत बड़ा हनुमान ठहरा है उधर। तो हनुमान को देखा तो क्या है, तो हनुमान ने बताया प्रभु जगन्नाथ ने बताया तुम वापस आ जाओ आत्महत्या मत करो, प्रभु आपको दर्शन देंगे उनका भी बुखार है वो लीला सही लीला करते हैं, तुम क्यों विश्वास नहीं करते हो, तुम आत्महत्या मत करो। तो अलवर ने बताया मैं जाऊंगा, वापस जाऊंगा, अभी वापस जाने से मेरे को दर्शन मिलेगा? नहीं नहीं अभी नहीं, 15 दिन के बाद मिलेगा। तो अलवर बोला तब मैं नहीं जाऊंगा, मैं आत्महत्या करूंगा जाके, अभी दर्शन मिलेगा तो जाऊंगा। तो हनुमान बहुत उनको समझाया तो सुना ही नहीं, नहीं मैं आत्महत्या करूंगा ही, तो सुना तो नहीं। हनुमान वापस चला गया, तो वापस चला गया तो अलवर फिर चलने लगा। लेकिन क्या हो तो जंगल था, तो मंदिर से निकल के दक्षिण दिशा पर जाता था, दक्षिण दिशा पर जाने से 2-3 किलोमीटर में समुन्द्र आ जाएगा। लेकिन जब हनुमान के साथ बात करता था वो कौन पूर्व कौन उत्तर दक्षिण भूल गया, तो दक्षिण दिशा पर नहीं जाया तो पश्चिम दिशा पर जाना शुरू किया। तो जाता है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर समुन्द्र नहीं आता, तो जाते 20 किलोमीटर चला गया। तो जितना टाइम पास होता है उनका हृदय में भगवान का दर्शन का वासना इतना तीव्र होता है, भगवान का विरह उसका और सहन नहीं होता है। तो जब एक ब्रह्मगिर स्थान पर पहुंचा तो भगवान को दर्शन करने के लिए उनका मन में इतना तीव्र वासना हो, इतना विरह भाव आया, तो भगवान भी आपको छुपा के रख नहीं सके उनका तीव्र भक्ति के कारण। तो भगवान सुधा चतुर्भुज रूप नारायण रूप धारण करके प्रकट हो गए, क्योंकि अलवर तो विष्णु का भक्त होता है ना, तो उसी रूप में वो प्रकट हो गए। तो इसीलिए वो विग्रह को अलवरनाथ बोलते हैं, अलवरनाथ उनका नाम था, अलवरनाथ, अलवरनाथ से अलवरनाथ हुआ। तो जब जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिलता है तो अलवरनाथ बहुत बड़ा मेला बैठता है। चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ दर्शन नहीं कर पाते थे तो उस 15 दिन जगन्नाथ का विरह में जाके उधर अलवरनाथ को दर्शन करते, अलवरनाथ का चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं करते थे, श्याम सुंदर रूप में दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जाते थे तो उनका जगन्नाथ का रूप दर्शन नहीं होता था, उनका श्याम सुंदर रूप दर्शन होता था। जगन्नाथ वांछा कल्पतरु होते हैं, भक्त का जैसा भाव होता है भाव का अनुसार उसी रूप को प्रकट करते हैं। जैसे आप लोग सुने हुए ना, जो गजबेश होता है स्नान पूर्णिमा दिन, गजबेश अभी भी होता है, एक गणपति भक्त करके एक आदमी आया था, गणेश का भक्त, तो पूरी में आया था, तो वो तो गणेश का भक्त, गणेश को भगवान करके मानते हैं। तो भगवान का दर्शन करने का आया, उसी दिन स्नान पूर्णिमा था, साल में 2 बार भगवान रत्न सिंहासन से नीचे आते हैं, एक स्नान पूर्णिमा का दिन और एक रथ यात्रा के दिन, उनका पहंडी विजय होता है। तो गणपति भट्ट आया तो स्नान पूर्णिमा स्नान मंडप पर रास्ता में ठहर के मंदिर अंदर जाना जरूरत नहीं, रास्ता से देख पाएंगे। तो देखा भगवान ऐसा बड़ा बड़ा आँखों है, हाथ नहीं पा नहीं, देखने के लिए ऐसा है, तो उसे ये क्या है, ये तो मेरा भगवान नहीं, ये गजमुख गजानन है, मेरा भगवान गजानन है, इसका मुंह तो ऐसा नहीं। तो उनका कोई भक्ति नहीं आया अंदर में, तो प्रणाम भी नहीं किया, तो दुखियों के भाग गया। तो जगन्नाथपुरी का ऐसा का लक्षण होता है, जगन्नाथपुरी से असंतुष्ट होकर कोई जाने वाला नहीं। तो भगवान ने चिंता की तो ये असंतुष्ट होकर चले जाएगा तो मेरा धाम का तो बदनाम हो जाएगा। तो फिर बड़े पंडा को भगवान ने बताया तुम जाओ उसको समझाओ, उसको वापस आने के बोलो मेरा दर्शन करने के लिए। तो बड़ा हेड पुजारी गया, बोला गणपति भट्ट आप आइए, भगवान आपको दर्शन देंगे, स्वयं मेरे को बताए। तो बोला मैं जाऊँगा तो मेरा प्रभु को दर्शन कर पाऊँगा, तो आप आइए। तो गया तो देखा जगन्नाथ सुभद्रा नहीं, जगन्नाथ बलदेव, वो दोनों गजमुख धारण करके बैठे हुए। तो वो प्रार्थना का प्रभु आपका ऊपर इतना कृपा हुआ, मेरा भाव को समझ के आप आज इस रूप को प्रकट किए, तो ये मेरा प्रार्थना है आप हर साल इस स्नान पूर्णिमा को इसी रूप में लोगों को दर्शन देंगे। तब से ये नया सिस्टम शुरू हुआ, तो एक गजबेश अभी भी गजबेश होता है। मैं आपको कल बताया ना, जगन्नाथ मंदिर में जो कुछ सिस्टम चालू हो रहा है, चल रहा है, वो खूब ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल से जो चलता है उतना ही, उससे इधर उधर नहीं होना। लेकिन कोई भक्त आ जाएगा भक्तिभाव से, भक्त जो देगा बस वो इंट्रोड्यूस होगा। फिर तो एक साउथ इंडियन भक्त था पुरी में, उसका नाम प्रभुदास, वो पान बेचता था, पान वाला था। तो जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था, तो पान बेचने वाला था, लेकिन उनका बहुत इच्छा होता था जगन्नाथ को पान खिलाने से, कितना अच्छा होता था। तो तब तो मंदिर में जगन्नाथ पान नहीं दिया जाता था, पान देना हाँ सिस्टम नहीं था। ये तो पान बेचने वाला उसका बात कौन सुनेगा, जो पान भगवान को देंगे, क्योंकि मन में इच्छा है। तो भक्त जो चाहते हैं भगवान का, भक्त का इच्छा का अनुसार भगवान का इच्छा होता है। तो 500 साल का बात, चैतन्य महाप्रकाश समय का बात है, उस समय उड़ीसा में और 5 महान भक्त थे, उसको पंच सखा बोलते हैं, जगन्नाथ दास, बलराम दास, अनंत दास करके। तो रात को जब मंदिर बंद हो गया, एक दिन रात को ये बलराम दास वो सिंह दरवाजे के पास वो जप करते थे। तो बलराम दास ने देखे तो 2 लड़का मंदिर के अंदर से निकले, देखने के लिए बहुत अच्छा सफेद कपड़ा पहने थे, एक उपवी धारण किए थे। तो 2 लड़का निकल के वो पान वाला का दुकान अंदर में घर में गए, और जब वापस आए वो पान चिबाते थे और लाल लाल मुख करके वापस आके मंदिर आए। तो बलराम दास सोचते ये कौन दोनों लड़का जाते हैं आता है। तो एक दिन बलराम दास के साथ साक्षात हुआ, ये पान वाला का साथ देखा हुआ मंदिर में। ये पान वाला क्या करता, थोड़ा बिजनेस करके पैसा मिल जाता था तो दिन भर तक मंदिर में बैठता था। तो पान वाला को बलराम दास ने पूछे, अच्छा मैं देखता हूँ हर रोज रात को 2 लड़का तुम्हारा घर पर जाता है, वो क्या करते हैं। तो प्रभुदास ने बताया, वो पान लेने के लिए आते हैं। तो वो हम तो देखता हूँ वो पान चिबाते हैं, मुँह लाख लाल लाल करके जाते हैं। तो पान खाते हैं तुमको पैसा देते हैं। तो पैसा तो नहीं देते हैं। अरे तुम पैसा क्यों नहीं लेता। तो मैं तो उसको देख के इतना खुश हो जाता हूँ, पैसा लेने के लिए भूल जाता हूँ, और वो दोनों भी पैसा नहीं देते हैं मेरे को। तो बलराम दास ने बताया, अरे देखो तुम बिजनेसमैन हो, तो ऐसा पैसा नहीं लेने से तुमको तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। कल जब वो 2 लड़का आएंगे तो वो दोनों से तुम पैसा मांगो। तो प्रभुदास बोला, ठीक है कल आज रात को जो आएंगे ना मैं पैसा मांगूंगा। तो उस दिन रात को तो वो 2 लड़का फिर आए, तो प्रभुदास ने पान दे दिए। पान लेके जब जाने के लिए शुरू हो जाने प्रस्तुत होते थे, तो प्रभुदास ने बताया, तुम रोज पान लेते तो पैसा किधर है, पैसा दो आज। तो दोनों फिर वापस आए, अरे पैसा तुमको कभी पैसा नहीं लेते हैं, आज पैसा मांगे कैसा मालूम पड़ेगा मेरे को। तो ठीक है कल मैं पैसा ले आऊँगा, कल तुमको पैसा दूंगा। तो प्रभुदास ने बताया, नहीं नहीं तुम बोलते हो कल ले आएंगे, तुम तो बच्चे आदमी हो, कल फिर नहीं आएंगे तो मेरा पैसा नहीं मिलेगा। तुम तुम्हारा चादर इधर बंधक रख के जाओ, बंधक क्या गारंटी, गारंटी रख के जाओ, क्या बोलते हिंदी में, हिंदी में किरबी, किरबी ठीक है, मॉर्गेज, मॉर्गेज इसको रख के मेरे पास तुम जाओ, तो चादर रख के जाओ, तुम कल आके पैसा देंगे तो चादर वापस लेंगे। तो दोनों से एक भाई चादर निकाल के उनके हाथ पर दिए और मंदिर में चले गए, वापस चले गए दोनों। तो नेक्स्ट डे सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोले, श्रृंगार करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, तो जगन्नाथ का चादर खो गया, चादर नहीं उधर। अरे चादर कौन ले लिया, अरे चोर अंदर घुसा चादर ले लिया। फिर लोगों ने सोचा, अरे चोर आएगा अंदर, तो जगन्नाथ का कितना अलंकार है, हीरे है, कितना मूल्यवान सब कुछ है, उसको लिया ने चादर लगे चला गया किधर। तो खूब ये बात हर जगह पर फैल गया, जगन्नाथ चादर चोरी हो गया। तो बलराम दास जब सुने, तो बलराम दास एक पान वाला के पास गए, पान वाला का पूछे, अरे 2 लड़का कल आए थे। हाँ 2 लड़का आए थे, पान लिए। तो पान ले पैसा दिए थे, नहीं पैसा तो नहीं दिए, पैसा नहीं था, वो लोग चादर रख के गए, आज रात को आएंगे तो पैसा लेके आएंगे। तो बलराम दास ने पूछे, देखो चादर ले आओ। तो जब अंदर से चादर ले आया वही चादर था जो चादर जगन्नाथ ने दिया था। तो बलराम तो देखो तुम इतना भाग्यवान हो, तो प्रभु आगे तुम्हारा पान खाते थे, तो प्रभु दास ने बताया मेरा ऐसा इच्छा था, भगवान को दिलाई तो उन्हें दे नहीं पाता था, तो भगवान आके स्वयं हाँ ये पान खा के जाते थे। उसी दिन से जगन्नाथ मंदिर में ए न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ, हर रोज भगवान को पान देने पड़ेगा। तो ऐसा है कि भक्त का भावग्रह जनार्दन, भक्त का भाव को कैसा ग्रहण करते हैं। तो ऐसा है कि एक बूढ़ी माता जी था, उसका मठ अभी भी है। ये प्रभुदास का जितना सारी लीला में बताता हूँ, ये बंधु महांती का और दासिया बावरी का वो आस्थान अभी भी है उधर, भी लांडी माता जी करके मठ आप पूरी जाएंगे देखें, लांडी माता का मठ। तो लांडी माता जो बॉल हेड हाँ चूल है, लांडी माता बोलते हैं, तो वो भगवान को जगन्नाथ को उनको पुत्र करके मानता था। और उन मन वो मन में ऐसा चिंता आया जो मेरा लड़का इतना घी खाते हैं, इतना स्वीट्स खाता है, हाँ उसको पेट में पीड़ा होगा, कैसा जीर्ण होगा इतना। तो हर रोज क्या करता था, नीम पत्ता को पेस्ट करके हाँ नीम पत्ता पेस्ट करके एक डिब्बा में भर के लेके जगन्नाथ को खिलाता था, ऑफरिंग करता था। तो एक दिन जब ऐसा जाता था अंदर में, तो दरुवन देखा, दरुवन के नजर में पड़ गया, दरुवन है तुम क्या लेके जाता हो इधर, ना इधर मैं नीम पत्ता लेके जाता हूँ, न किसी के लिए ले जाता हूँ, मेरा लड़का के लिए ले जाता हूँ। तो लड़का कौन है उधर, वो सोचता है दरुवन सोचता है कि कोई आदमी अंदर काम करता है इसका लड़का होगा, कौन है तुम्हारा लड़का। तो बूढ़ी ने बताया देख नहीं पाता है, ये जो बैठा है इतना बड़ा बड़ा आँखों पर के वो मेरा लड़का है। वो तो बूढ़ी आदमी डरते नहीं, इसे बता दिया। लेकिन ये दरुवन बहुत गुस्सा किया, अरे तुम प्रभु को नीम पत्ता देने के लिए जाते हो, प्रभु मेरा 56 भोग खाते हैं और तो उसके मन उससे उनका मन संतुष्ट होता है, तुम नीम पत्ता खाने के लिए बैठे हो इधर, भागो इधर से। तो बोल के बूढ़ी को भगा दिया। तो बूढ़ी तो बहुत दुखी हो गया, हाँ अभी तो प्रभु मेरा लड़का बच्चा नीम पत्ता नहीं खाया कैसा होगा। तो देखे रात को रोता था। तो मध्य रात्र को तो जगन्नाथ आए उसके सामने में आए, तो जगन्नाथ बताए माँ तू मेरे का जो नीम पत्ता दिए नहीं, मेरे पेट में बहुत दुखा हुआ, दुख हाँ पीड़ा होता है, अरे भगवान के पेट में पीड़ा होता है नहीं होता है, लेकिन भक्त सोचता है मेरा इनको मेरा लड़का है इसका पेट में बैठा था, भगवान को पीड़ा होता है इसलिए भगवान आए, तू मेरा नीम पत्ता दिया नहीं आज। तो जब जगन्नाथ बताते थे तो लांडी माता कुछ बोलने के लिए शुरू करते थे, तो जगन्नाथ अंतर्धान हो गए। राजा का स्वप्न में आए, राजा को बताए राजा तुम अच्छा से खा के आराम से सोए रहे इधर, तुमको मालूम है तुम्हारा दरुवन मेरा माँ को अंदर घुसने नहीं दिया, इतना मीठा घी खा के मेरे पेट दुख होता है, तुम 56 भोग खिलाते हैं लेकिन तेरे 56 भोग में मेरा संतुष्ट नहीं, मेरा नीम पत्ता में मेरा मन है, तुम्हें नीम पत्ता नहीं खिलाएंगे तो तुम्हारा 56 भोग में नहीं खाऊंगा। तो फिर राजा आया, हाँ जगन्नाथ अंतर्धान हो गए। तो राजा आके फिर लांडी माता कौन है, तो ढूंढ के लांडी माता को देखा, तो उनका प्रणाम किया, तुम इतना भाग्यवती हो, तो जगन्नाथ तुमको माँ करके मानते हैं, तो बताया तुम इसे नीम पत्ता लेके गए थे, तो नीम पत्ता रख के रोती थी, तो वो नीम पत्ता लेके जगन्नाथ को भोग चढ़ाया। तो उसी दिन से जगन्नाथ मंदिर में न्यू सिस्टम चालू हो गया, हर रोज जगन्नाथ को जितना खाने देने से भी एक नीम बिटर को क्या बोलते हैं, कड़वा हाँ एक कड़वा आइटम देने पड़ेगा, अभी भी कड़वा आइटम भोग चढ़ाते हैं उनका। ये भगवान का भक्त जगन्नाथ मंदिर, एक ऐसा कुछ लीला में बताऊंगा आज और कल, और लास्ट लीला बताऊंगा आपको, हाँ कैसे नया सिस्टम शुरू हुआ। तो विदुर के बारे में आप सुने, विदुर के हाथ से भगवान क्या खाए थे, हाँ केला का चेल का चिल्का खाए थे ना। जब विदुर जब दुर्योधन इनवाइट किया था, दुर्योधन घर के जाने से पहले, तो विदुर तो भगवान आ गए विदुर का घर पर, सब केला दिया चिल्का खिलाए थे। भगवान और एक बार गए थे, जब दुर्योधन और पांडवों का बीच में युद्ध होने से पहले भगवान दोनों को जोड़ने के लिए गए थे, संधि स्थापन करने के लिए। तो एक रात विदुर का घर पर थे, तो उस दिन रात को विदुर ने स्पिनेज साग और टूटा हुआ चावल का केक पिठा खिलाया था। हाँ, विदुर खिलाया था, भक्ति से प्रेम से खिलाया था। अभी तो वो कृष्ण भगवान जगन्नाथ बन गए, जगन्नाथ बन के तो छप्पन भोग खाते हैं बैठ के उधर। तो विदुर का मन में वासना आया, मेरा प्रभु को थोड़ा टूटा हुआ चावल का पिठा खिलाऊंगा। तो पुरी में आया, पुरी आके समुद्र के किनारे पर एक आश्रम बनाया। आश्रम बना के, वो आश्रम अभी भी है, विदुर का चौरा अभी भी है, आप लोग देख पाएंगे। उधर एक तुलसी मंच बनाया, बना के वो क्या टूटा हुआ चावल को, हिंदी में ऐसा कोई नाम है टूटा हुआ चावल का, हमारा उड़ीसा बांग्ला में खुद बोलते हैं खुद, कड़ी, हाँ कड़ी या कनी होता है, वो चावल पे पिठा बना के, तीन पिठा बना के भगवान को भोग चढ़ाया। तो उसी दिन जो पूरी मंदिर में जो पुजारी जो भोग लगाता है, तो उस समय ऐसा सिस्टम था, तो पुजारी जब भगवान को भोग चढ़ाएंगे हाथ में पानी लेंगे, पानी, हाँ तो मंत्र पाठ करेंगे, तो पानी में भगवान का प्रतिच्छवि देखेंगे, मूर्ति देखेंगे। तो भगवान का मूर्ति पानी में, इसको चौलू बोलते हैं, चौलू, पानी में देखेंगे तो इसका मतलब भगवान भोग ग्रहण की, जब पानी में नहीं देखेंगे वो भोग नष्ट हो गया, भगवान ग्रहण नहीं किया, सब नष्ट हो जाएगा, दूसरा को नहीं खिलाएंगे, सब मिट्टी में गिर देंगे, हाँ नीचे। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो सब भोग नष्ट हुआ। नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, फिर भोग चढ़ाता है वो भगवान का छवि नहीं आता है। तो दो तीन हो गया, दो तीन दिन ऐसा हुआ, तो पूरा उड़ीसा का लोग, हाँ सब व्यस्त हो गए, क्या होता है जगन्नाथ क्यों नहीं खाता है। तो पुरी में जगन्नाथ का एक भक्त था, वो सिर्फ जगन्नाथ का प्रसाद खाता, जगन्नाथ का प्रसाद बगैर कुछ नहीं खा रहा था। तभी दो दिन तीन दिन चार दिनों का कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है उसको, क्या खाएगा। तो भगवान का प्रार्थना कर, प्रभु आप कुछ खाते नहीं, मैं भी कुछ नहीं खाता हूँ, तभी तो मैं मर जाऊँगा, कृपा कीजिए आप खाइए कुछ। तो जगन्नाथ कृपा करके उसको बताए, देखो वो जो मंदिर में भोग होता मैं नहीं खाता हूँ, मैं उधर जाके खाता हूँ, तुमको खाना है तो उधर जाओ खाने के लिए। तो वो किया, वो जाके देखा है, एक आदमी भक्त ऐसा तुलसी मंच बना के आश्रम बना के ये भगवान को ऐसा पिठा, हाँ वो बोला है मेरा विदुर भक्त है, वो टूटा चावल का पिठा मेरे को खिलाता है, उधर मैं जाता हूँ। तो जाके देखा वो टूटा चावल का पिठा भोग चढ़ाता है। तो भक्त आके पांडव लोग को बताया, देखो तुम इधर छप्पन भोग देता है, लेकिन भगवान का इच्छा टूटा चावल का पिठा खाने के लिए, तो तुम टूटा चावल का पिठा दो, भगवान ग्रहण करेंगे। तो नेक्स्ट डे छप्पन भोग का साथ वो टूटा चावल का पिठा बना के जब भोग लगाए, तो पांडा जो पुजारी भोग चढ़ाते थे भगवान का प्रतिच्छवि भी देखा होता है, तो भगवान का मन तो टूटा हुआ चावल पिठा खाना। तो ये बात को जब राजा को बताए, तो राजा साथ साथ गए समुद्र किनारे पर, जाके देखे वो आश्रम है, वो तुलसी मंच है, लेकिन विदुर उधर नहीं थे। तो उसी दिन से जगन्नाथ मंदिर में ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, हर रोज जगन्नाथ को खाने के साथ एक टूटा चावल का केक या पिठा भी खाने पड़ेगा। तो ऐसा जगन्नाथ मंदिर में एक एक नया नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। तो जगन्नाथ का जो पूजा का विधान होता है, तो जगन्नाथ जो स्वयं बताए जैसा ऐसा करना है उसी के अनुसार विधान हो चलता है, और तो आचार्य लोगों ने जो विधान दिए हुए उसी के अनुसार चलता है, और सब ट्रेडिशन को तोड़ते हैं पंडित लोग। जब कोई भक्त तो उनका भक्ति का प्रभाव ऐसा दिखाता है, हाँ तब तब तोड़ता है। तो ऐसा जगन्नाथ का बहुत सारी लीला होता है। तो समय हो गया, काल हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ भक्त के साथ कैसा अंतरंग लीला करता है। तो जगन्नाथ मंदिर में जैसे हमारा तुलसी देते हैं ना, जगन्नाथ मंदिर में दयना दमनक ये बहुत अच्छा पत्ता है, जिसमें जगन्नाथ का बहुत तृप्ति होता है। आप लोग जब पूरी जाएंगे पंडित लोग पूछेंगे दमनक क्या है, दयना पत्ता क्या है, वो लोग आप लोग को बताएंगे। तो दयना पत्ता के बारे में काल जगन्नाथ वल्लभ बगीचा में दहना पाता और जो सो कुछ लीला हुआ जगन्नाथ का, वो लीला के बारे में बताऊंगा। तो मैं जगन्नाथ के लीला के बारे में एक किताब लिखा है, हिंदी में निकला है छोटा किताब, तो इंग्रेजी में और एक बड़ा किताब लिखा है और बहुत सारे 50 पास्ट टाइम्स भगवान का लीला है, जिसका आपको हिंदी मालूम है इंग्रेजी एक किताब संग्रह कर सकते हैं। तो बाद में हिंदी में भी एक किताब निकलेगा, लेकिन हिंदी में इंग्रेजी में जो राधा रानी लीला था, अभी हिंदी में गौर पूर्णिमा का टाइम में हिंदी में राधा रानी किताब निकला। कृष्ण के साथ जैसा कृष्ण लीला है, कृष्ण का जन्म का लीला है, उनका बाल्य लीला है, पौगंड लीला है, यौवन लीला है, वैसा राधा रानी का भी लीला होता है। चिन्मय धाम में राधा रानी कैसा प्रकट हुई, इस भौतिक जगत में राधा रानी का कैसा प्रकट होता है, राधा रानी का बाल्य लीला कैसा होता है, शादी का पहले राधा रानी का लीला, शादी का बाद में राधा रानी का कैसा लीला होता है, कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं तब राधा रानी का क्या लीला होता है, ये सब लीला और राधा रानी का ग्रंथ में लिखा हुआ, हिंदी भाषा में निकला हुआ, आप लोग हिंदी भाषा में राधा रानी का लीला भी पढ़ पाएंगे। हाँ, जय श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव प्रभु की, सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल।